मेरी आत्मा जथा गोपी जमा आत्मा संकर्षण के लिए करें। आत्मा माने यहाँ कौन? संकर्षण उनकी आत्मा है, वो भी हमारे प्रिय नहीं है जैसे गोपियां हमारी प्रिय तन मध्य। उन गोपियों के बीच में भी सबसे बड़ी पदवी कौन सी है? तन्मध्य राधिका सर्वश्रेष्ठ राधा प्रियतम समस्त लोगों में प्रिय वो कृष्ण से अभिन्न श्रीमती राधिका जी हैं। तब एक और बात ये कह रहे हैं अंत में, फिनिशिंग टच में, अंत में कह रहे हैं वही राधा जी अपनी करुणा का दान करने के लिए महाभाव स्वरूपा होकर आई हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनमें रसराज वो जो कृष्ण है सबसे उन्नत किशोर कृष्ण गोपियों के प्राण प्रियतम वो उसमें मिल गए। तो ये हो गया रसराज महाभाव स्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु, उनके जो सेवक हैं अंतरंग कौन? रूप गोस्वामी। उन रूप गोस्वामी की चरणों की धूलि को जो एकांत अनुवर्त है उनसे बढ़कर के इस पृथ्वी में और कितना सुंदर फिर उसी में ये टच किया। ये प्रभुपाद जी की ये सुंदर दिशा। हमारे गुरु जी ने कहा राधा जी की प्रिय दासी उसका अभिमान छोड़ करके इस जगत में अपने को परमहंस जो कहलाते हैं अत्यंत दीनता बसत ये परमहंस अपने को कहते हैं जगत, इनके इस चीज को इस भाव को कोई नहीं समझता। कहां उनका पद है? कौन विश्वभान दैतदास उनकी दैता है, मैंने प्रिया है किनकी? राधा जी की। और उसके परिचय को छोड़ दिया, परिचय छोड़ करके इस जगत में कहते हैं कि मैं परमहंस हूं। अरे बड़ा भारी दाम्भिक है ये अपने को परमहंस कहता है, किंतु लोग नहीं समझते कितनी बड़ी भारी पदवी को
छोड़कर
परमहंस जैसा तुच्छ पदवी को धारण किया। इन तुच्छ पदवी को ही ये जगत वाले समझते हैं कि बहुत बड़ा राष्ट्रपति वेश बदल करके कहीं गया और कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा था वो समाज में नहीं आ रहा था, नहीं जानता है मैं यहाँ का कोतवाल हूँ। कोतवाल का नाम सुनते ही सब लोग करते हैं ये डराने के लिए, वैसे का वैसे जगत में कितना तुच्छ पदवी को लेकर के आए। किंतु हमारे सहजिया लोग हैं अपने को देखो तो ये परमहंस कुल चूड़ामणि कहलाता है, दाम्भिक आदमी है। अरे मूर्खों दाम्भिकता नहीं, इतनी दीनता है जो राधा पद की दास ने रूप मंजरी की दास ने अपनी नैन मंजरी अपने को परमहंस कर रही, कितना नीचे आ गया जगत में एक साधक बनकर के उनके समझ में हम लोग पहले नहीं समझ सके। अब धीरे 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 अपने गुरु जी की भी बातों को अब कुछ कुछ समझ में आता है, पहले तो एकदम नहीं आता था किंतु थोड़ा थोड़ा ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। आप लोग भी उन चीजों को समझने की चेष्टा करेंगे उनके भावों को, किंतु बिना ऐसे हुए ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए रूपानुग जो है कौन है? रूपानुग रागानुग में भी जो श्रेष्ठतर है वो रूपानुग है। रूप गोस्वामी के हृदयगत अपना जो भाव है उसका जो अनुगमन करने वाले हैं वो हैं रूपानुग। रूप गोस्वामी ने पांच भावों का वर्णन किया है भक्त गोस्वामी सिंधु में, उनके भाव हैं, किंतु अपना उनका निजस्व हृदयगत भाव है राधा जी की किंकरी, उसी भाव को जो ग्रहण करते हैं वो सबसे बड़ी ख्याति है। तहां देर ऐश्वर्य संबंधी चैतन्य चैतन्य आस्था चैतन्य चंद्रांड किसका है कभी कर्ण उसमें वो लिख रहे हैं आस्था वैराग्य कोटि भवत कोटि कोटि वैराग्य हो किसी को सम दम शांति मैत्रादि कोटि सम दम कोटि कोटि ये मैत्री इत्यादि सब जगत में रहे वो रहे पतंग ध्यान कोटि कोटि भव तत्क ध्यान का अनुधान करता है ध्यान करता है ऐसे कोटि कोटि हो भवतु वैष्णवी भक्ति कोटि विष्णु के प्रति भक्त जो करने वाले हैं वो कोटि कोटि रहे उनको भी मेरा प्रणाम है। कोटि अंशो अपि अस्य नश्याद अपि तद्गुणो यत् स्वतः सिद्ध आस्ते श्रीमच्चैतन्य चंद्र प्रिय चरण नख ज्योति आमोद भाज। ये जितने का मैंने वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु की चरणों की चरण की जो प्रिय हैं उन प्रिय जो उनके सेवक हैं महाप्रभु के ये रूप गोस्वामी इत्यादि उन रूप गोस्वामी के चरण के नख की ज्योति के बराबर एक कण के बराबर भी वो समझे अंत में ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर रूप गोस्वामी जी के जो सेवक हैं उनकी सबसे बड़ी ख्याति उन्होंने बतलाई। एक एक इसी ये था खेती का मध्य जीवन कौन बड़ो थे कृष्ण भक्त हो गया जहां ये कृष्ण भक्त के ऊपर में ऐसी कृति जति हो गई किसी की मैं रूप मंजरी की दासी अनुचरी उनके चरण पादुका का वहन करने वाला मैं तब तक वो सबसे बड़ा हो गया। एक नशा हो गया एक घंटा हो गया इसके बाद में संपत्ति मध्य कौन संपत्ति गनी राधा कृष्ण प्रेम जा रहा है यही बड़ा आज ही तक थोड़ा अभी मैं सोच रहा था आज समाप्त हो जाएगा किंतु अभी बहुत सी चीजें हैं इसके बाद में श्रीमद् भागवत बल्कि सवेरे श्रीमद् भागवत और जब जन्म तक जन्मदिन अभी जन्माष्टमी आएगी तब तक हम लोग जन्म महात्मा कृष्ण के जन्म साथ हम लोग वो दिन कृष्ण का जन्म किया है इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवत ये प्रसंग हमारा भी हो जाएगा तब अभी सवेरे में आप लोग बैठे हैं तो ये श्रीमद् भागवत पिताओं के साथ देवता के साथ में दे सकता हूँ आप लोग सब सुनिए और
शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणं तदाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्तजं तं प्रेतमप्रेतकृत्यं दैवानामिह प्रार्थयामि पुत्रेति तन्मयतया कर्मो दिने तु तं सर्वभूतहृदयं मां सदैवास्मि सदैवास्मि नित्यं परस्य पुरुषस्य सुखं यस्य समस्त संपत्तियों में जीव के लिए कौन सी संपत्ति श्रेष्ठ संपत्ति है? राय रामानंद जी ने बताया राधा कृष्ण राधा कृष्ण के चंद्र के चरण में जो यही सबसे बड़ी संपत्ति, इसी को हम लोग प्रारंभ से लेकर के भक्ति के अस्मृति राधिका के प्रेम को कृष्ण के प्रति दिए जाते हैं। वही बड़ा धर्म है जिनको राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम। साधारण रूप में संपत्ति संसार का वैभव रूप में पैसा स्त्री धन गो धन पुत्र धन ये सब धन है, किंतु ये धन नहीं है। जीवात्मा के लिए सब धन नहीं है, कृष्ण के चरणों में जो भक्ति होती है वही यथार्थ। जब तक थोड़ी सी भी स्त्री हाथ इन चीजों के लिए बनी रहेगी, स्त्री धन गो धन पुत्र धन भूमि धन ये सब वैभव का धन, उसके प्रति ये धन बना रहेगा तब तक उस प्रेम में हमारा अधिकार नहीं है। जब इसके प्रति हम संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे ये विष है, विष है और उसका संपूर्ण रूप से विरोधी है, किसका प्रेम धन का ये विरोधी है, जब अच्छी तरह से समझें तब इसके प्रति विरक्ति होगी और उसके प्रति अनुरक्ति, अन्यथा नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी को, हमारे नारद जी को और ऐसे ऐसे जो लोग हैं, रूप गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास था, जगत की कोई भी सार्वभौम संपत्ति है उनको देने पर भी उसके तरफ देखेंगे? यदि सुखदेव गोस्वामी की मैया रोते 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 मर जाए तो सुखदेव गोस्वामी उसको छोड़ करके फिर संसार में आएंगे कि नहीं? ऐसे ही सब संपत्ति को तुच्छ समझने वाला व्यक्ति को घर में प्रभु अनुरक्ति हो जाएगी तो ये अपने आप ही इसी का नाम है। वही सबसे बड़ा धन है जिसको कृष्ण प्रेम का अंत में बताया। यह प्रेम धन सबसे अधिक श्रीमती राधिका जी ने, यदि किसी को लोभ हो तो यदि उनका अनुगत्य जीव करेगा आप दूसरे किसी को नहीं। कल हमने विस्तृत रूप में इस पर विचार किया, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी का भाव, भक्ति सिद्धांत जी का भाव। दुख मध्य कौन दुख है दूर कर, कृष्ण भक्त बिना बिना दुख नहीं देखी कर। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख है कि जिसके द्वारा हमको ऐसा प्रेम मिलता है, ऐसा राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम, या भक्तों के हृदय में जो प्रेम, जिनके संग से इतनी बड़ी भारी संपत्ति मिली थी, आज वो संग हम खो दिया। यही संसार में सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर के दुख नहीं है। यदि उनका संग हमको रहता, अनायासी वो प्रेमी जाते, वो संपत्ति मिलती, किंतु अब नहीं मिलेगी। क्यों? वैसा आत्यंतिक दुख की वृत्ति है। जब तक ये दुख होता रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है, दुखों से सदा के लिए निवृत्ति हो गया। आत्यंतिक माने अति रूप, उसकी पुनरावृत्ति नहीं है, तो इसको मुक्ति नहीं। भागवत में कहा गया कि मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। मुक्ति इसको कहते हैं जो हमको विरूप अभी मिला है, जड़ और मन का हमारे ऊपर में जो पड़ते हैं, पूर्ण शरीर और सूक्ष्म शरीर, सदा के लिए ये छूकर अपने स्वरूप में जीव जब प्रतिष्ठित हो जाता है, इसका नाम है शंकराचार्य जी का, या वो पंच दर्शन वाले हैं उनकी जो मुक्ति है वो स्वरूपतः मुक्ति नहीं है। उससे तो भगवान का नाम करने वाला कनिष्ठ अधिकारी, जो भगवान के लिए जो घंटा और शंख भी बजा लेता है, वैष्णव की हरि कथा को सुनता है, हम समझते हैं कि आप लोग उनके आत्यंतिक मुक्ति से टूटी हुई हैं। बल्कि कहा गया है कि लोमड़ी या सियाल, सियाल होते हैं जो हुआ हुआ करते हैं, वो वैशेषिक मुक्ति वालों से और शंकराचार्य जी की मुक्ति जो आत्यंतिक जो मुक्ति है उससे कहीं वो जो भेव भेव जो करते हैं।
वृंदावने परम ब्रह्म सयालतम रजाम्यहं नचे वैशेषिके मुक्तिं प्रार्थयामि कदाचित्।
हम लोग वैशेषिक मुक्ति या शंकराचार्य वाली या और न्याय गौतम वाली, गौतम गौतम माने क्या होता है, गौतम ने न्याय वाली उनको कहते हैं गौतम, चौपायों में सबसे कम अर्थात गधा, वो उसको हमको मुक्ति ये सब कुछ की जरूरत, ये सब उसमें आनंद नाम की कोई चीज नहीं, भगवान की सेवा नहीं। इसीलिए उन्होंने वृत्रासुर ने कहा है, मैं भगवान की सेवा को छोड़ करके अपनर्भवम न जाके, अपनर्भवम माने क्या, जिसको आत्यंतिक मुक्ति कहते हैं, जन्म मरण से रहित होना, मैं वो भी नहीं चाहता। मैं तो इस जगत में वृत्रासुर हुआ हूँ और मेरे लिए अच्छा है, या कोई भी जन्म, चीटी का जन्म, सुकर का जन्म, जैसे भी मिल जाए, हिरण का जन्म मिल जाए, वो बल्कि अच्छा, किंतु हमको वो शक्ति जरूरत है। इसलिए वैष्णव ने यहाँ तक स्वीकार किया मुक्ति, इसको स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थिति होने का नाम ही, प्रत्येक जीव का अपना एक एक स्वरूप है, वही इसमें आबद्ध है।
माया उसके ऊपर में फूल और सुख पर्दा दे रहा है। एक जीव का स्वरूप, जैसे ये जीव का शरीर का गठन है, इसमें समस्त इंद्रिया सुंदर में लगी हुई है और इसके अंदर में मन है, बुद्धि है, इच्छा है, क्रिया है, इसका नाम है। ऐसे ही जीव के चित्त स्वरूप में कृष्ण का दास भाव निहित है। वो कैसे है कह रहे हैं कि तो अनुभूति होगी, जब जब उसकी उपलब्धि होगी तब। किंतु एक बात है, जिसको उपलब्धि हो गई ये कहने के लिए नहीं आएगा कि तुम ये मुक्ति का ये लक्षण। अच्छा, यदि वो आज्ञा भी कहने के लिए तो उसकी भाषा भावना हम लोग समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? उस जगत के भाव को प्रकट करने के लिए कोई भी उदाहरण ठीक ठीक नहीं है, कोई है ही नहीं है। न वो भाषा है, न वो भाव है। कहते तो वो ठीक है, कृष्णचंद्र जी श्यामल रंग के थे। कैसे श्यामल रंग? जगत में ऐसा कोई श्याम रंग है? राधा जी का मुखारविंद चंद्रमा के समान, उनके नयन कमल के समान है, कोई दूसरा। इसीलिए स्वरूपेन व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थिति का नाम, जैसा हमारा स्वरूप है उसमें व्यवस्थिति विशेष रूप से स्थिति हो जाने का नाम। इसमें यदि कहेंगे अपने स्वरूप में व्यवस्थिति का नाम मुक्ति है तो ये आधा सत्य हुआ आधा सत्य नहीं हुआ। क्यों? जब तक ही पर स्वरूप में हम व्यवस्थित नहीं होंगे, स्वस्वरूप में व्यवस्थित होने पर भी श्रेयस्यते भक्ति मुदस्य देवी वो अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए जो प्रयास करता है वो अर्ध कुटकुटी न्याय वो उसे नहीं होगी। कैसे होगा? सूर्य के प्रकाश होने से जैसे हम अपने को देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, उसी प्रकार से भगवत स्वरूप की उपलब्धि होने पर अपनी स्थिति, अपना स्वरूप, दूसरों का स्वरूप और जो चीजें हैं स्पष्ट रूप से दिखेंगे। इसलिए पर स्वरूप प्रतिष्ठित होना ही ये जब यहाँ तक तो हुआ ये, किंतु अभी भी यथार्थ मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति कब होगी? स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर जो उसके स्वरूप में सेवा की भावना है, जो है कृष्ण प्रेम कहते हैं, गोपी प्रेम कहते हैं, ब्रज प्रेम कहते हैं, वो जीव के हृदय में प्रकट हो जाने का नाम ही यथार्थ मुक्ति। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त कल्याणी कृष्ण प्रेम हैया छे जहा से मुक्त सिद्ध। कृष्ण का प्रेम जिनमें हुआ वो शंकराचार्य जी मुक्त है, बिल मंगल जी अभी बद्ध हैं, उनको भावावस्था कर। तो कोई शंकराचार्य होना चाहता है ना, बिलो मंगल का अनुगत्य में उनका दास होना चाहता है, कौन अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगेगा? रूप गोस्वामी का दास होना, कोटि कोटि मुक्तों के से भी हमको जरूरत नहीं है मुक्त होने की, उनके चरणों की रज की कृपा हमारे लिए। इसलिए मुक्त शिरोमणि वही है जो जिसके अंदर में कृष्ण, मुक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, उनसे ऊपर वाले उसमें शिरोमणि में भी वो मूल चिंतामणि जो बीच में दी जाती है वो हनुमान जी, उसमें भी सबसे अधिक हमारे अर्जुन इत्यादि पांडव, उनमें भी उनसे भी ऊपर गोपियां, उन गोपियों में भी ललिता विशाखा इत्यादि, उनमें भी चंद्रावती राधिका, उनमें भी ये सर्व
इसलिए राधा जी की यदि कृपा हो जाए और उनकी सेवा की प्राप्ति हो जाए, वो जिसको वैसा जिसको प्रेम हुआ या ऐसे होने की संभावना जीव में है उसको भी धर। अभी नहीं बात जिनको रोग हो गया है उसको भी सिर हो गया, ऐसे लोगों का संग हो जाए, यही मुक्त लोग है। भरत जी मुक्त हुए किंतु हम लोग वैसा मुक्त होना नहीं चाहते। अजामी मुक्त हो गया, कौन अजामी? हम लोग वैसा मुक्त होना चाहते हैं, उससे तो हम अभी जिस स्थिति में है उससे अच्छे हैं। अभी किस स्थिति में हम लोग यहाँ ब्रज में लीला कर रहे हैं, कृष्ण की लीला का पठन पाठन और श्रवण कर रहे हैं। अजामी को ये सब सुनने का ये सुयोग होगा तो हमको क्या जरूरत है सुनने? इसलिए ऐसे मुक्त लोग भी पांच प्रकार के बतलाए, पांच प्रकार के माने नहीं नहीं सालोक्य सारूप्य सामित्य साष्टी और साई, ये पांच प्रकार के। जिस साई जो भक्तों के लिए सबसे अधिक थी, किसी कारण से इन चारों को कहीं ग्रहण नहीं कर लिया, सामित्य किसी कारण से ग्रहण नहीं करते किंतु ले भी लिया। जैसे काग गोस्वामी ने कौवे का सारूप ले लिया, क्यों लिया, कारण क्या था? नींद बने गए, नहीं तो गरुड़ यदि बन गए तो गरुड़ को जैसे शंका हो गई ना, उनको भी कभी शंका हो सकती है भगवत स्वरूप, इसलिए हमको वो करना। इसलिए ये चार मुक्तियों को कहीं कहीं ले लेंगे, जैसे गोलोक वृंदावन में जाने में सारूप्य सामित्य ये सब जरूर मिलेगा ही, बिना लिए हुए कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। अब भी है मुक्ति तब सर्वबंधनाश तब से हरि त्यपारे, पहले ये मुक्तियां होंगी जरूर आएंगी, किंतु यदि कृष्ण के समीप गोपियों के सामीप्य में यदि मिल जाए तब तो ये कितना सुंदर होगा, गोपियों का कृष्ण का सारूप्य नहीं गोपियों का सारूप्य, अजामिल का हुआ नारायण का सारूप्य, हम लोग ऐसा नहीं, सारूप्य भी गोपियों का सारूप्य, सामीप्य भी गोपियों का सारूप्य, और क्या है सारूप्य सालोक्य गोपियों का सालोक्य गोलो वृंदावन ये सारू, और सृष्टि को छिपा करके ऐश्वर्य है उधर किंतु छिपा कर, तो ये इसको ग्रहण। ये मुक्तियां चारों दो प्रकार की, एक होती है सुख ऐश्वर्य उत्तरा और एक प्रेम सेवा उत्तरा। सुख ऐश्वर्य उत्तरा पर व्योम के नीचे एक स्थान है, पर व्योम के नीचे और सदाशिव लोक के नीचे विद्या के ऊपर एक लोक
सिद्ध लोक वस्तु तमसा पार,
उसको जिसको भगवान अपने हाथों से वध करते हैं वे भगवान के शत्रु लोग, और ऐसे वाले लोग ब्रह्मवादी लोग वहां पर उनको उनके ऊपर में और शंकर जी के लोक के और परब्रह्म के बीच में एक और लोक, शंकर जी का जो लोक है ना क्या सदाशिव लोक, सदाशिव माने सिद्ध लोक दो, नीचे का सिद्ध लोक और ऊपर वाला सदाशिव लोक, और इससे ऊपर और परब्रह्म से मिला हुआ है एक और, इसी में सामित्य सारुक्य सालोक्य वाले सुख ऐश्वर्य उत्तरायण को दुख की अनुभूति नहीं होती, केवल सुखी की अनुभूति होती है, किंतु वहां पर प्रेम सेवा नाम की कोई चीज नहीं है वहां। और इससे ऊपर में वैकुंठ का धाम सालोक मने साकेत धाम इत्यादि, जहां पर की प्रेम जैसे हनुमान जी का प्रेम स्वरूप, नृसिंह भगवान जी का सेवा है, प्रहलाद महाराज जी जैसे, और उनके ऐसे ऐसे सब वहां पर होता है प्रेम सेवा। और इसके बाद में तब ही गोलोक वृंदावन। तो हम लोगों के लिए मुक्त शिरोमणि कौन है? जिनको ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया जो गोपियों का भाव वाला है, उनकी सेवा की भावना वाला, वैसा ही स्वामी, ऐसा ही सालू, ऐसा ही सालू हो करके और कृष्ण राधा जी की सेवा, ये सब सर्वोत्तम श्रेष्ठ ये। गान मध्य कौन गान? जीव नित्य धर्म। संगीत के बिना जीव रहता नहीं है। वो छोटा सा चरवाहा भी भैंस चराते हुए भी आलाप करता है, सब बात कुछ नहीं तो घूम घूम करता है। एक झिंगुर होता है ना, वो भी गान करता है कि नहीं? एक मेढक है, वो टर्टल गान करता है, बिना गान किए कोई और नहीं सकता, वो उसके स्वरूप में ही है। तो इन जीवों के लिए सबसे गान मध्य कौन गान? जीव निज धर्म। कौन सा गान उनके लिए धर्म है? राधा कृष्ण प्रेम के लिए जय गीतर अर्थ मर्म। राधा कृष्ण प्राण मोर जीवन मरने गति आर नाही। तारपरे कालिम धीरे तुले केली। देखो इसमें कैसा अनुप्रास है, कालिम धीर तुले केली कदम दे रहा, कितना सुंदर लिखने वाला भी है, भाव भी इसमें कितना सुंदर। कालिंदी जो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई, कृष्ण को देख करके उच्छलित हो रही है, कमल के फूल उसमें भरे, हवाएं उन पर झंकार कर रहे हैं और कालिंदी जी प्रतीक्षा कर रही है कृष्ण और गोपियों की, कब उनकी सेवा का सुयोग हो रहा है। उसके पास ही में कदम्ब के उपवन है, उसमें कदम्ब के पेड़ लगे, पास ही सेवा कुंज है, वो बंसी बट है, निधुवन है, उसी के किनारे है, सुंदर सुंदर कुंज है। केली केली कदम्ब, जिसके नीचे केली होती है, अथवा केली कदम्ब ही एक होता है, एक में फूल और फल हो, फूल होकर के पकने पर फल हो जाता है, और जिसमें ये नहीं होता,
छोटा छोटा
बस उतना ही सुगंध उसमें रहेगी भी, माने आपत्य रहित होगी, इसका भाव भी खत्म। केली कदम दे रहा किसने बैठाएगा? दोनों को, दोनों का विलास वहां, कैसे मैं उनकी सेवा करूं? देखो इस गान का क्या तात्पर्य है, श्याम गौरी अंगे दिया चुआ चंदन, चंदन चंदन माने क्या है? वो जो चंदन होता है असली, उसका निर्जास और उनके अंगों में मैं दूंगा। कैसी कैसी ये भावना कर रहे हैं, जिस गीत का मर्म ऐसा और कैसा इसमें बतला रहे हैं प्रभुपाद जी। निर्जन में कैसे उनके साथ में विहार हुआ और जो बातों का वर्णन श्रीमद् भागवत के गोपी गीत इत्यादि में ये वर्णन है, तव कथामृतम तत्त जीवनम कब्धिरेतम कल्मषापहम श्रीमदाततम द्विकिरन्ति दे प्रहसिताननम प्रेम विक्षणम विहरणं चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदं विश्वयोगं कलिलाकां मनः कांतं।
ये सब चुनिंदे श्लोक है। निर्जन में आपके साथ में हमारा जो संलाप हुआ, आज हमें वह उसी लिए दुख हो रहा, हम मर रहे हैं, कैसे कैसे आलाप हुए होंगे, कैसे कैसे नाट्य अभिनय किए होंगे, कैसे कैसे उनका श्रृंगार किया होगा, कैसे उनके गले में झूल करके नृत्य किए होंगे, इसी सब का स्मरण करके हमारा मन मुंजित हो जाए, मोहित हो जाए ऐसे सुकोमल चरणों से, जिसको हम अपने अंगों में भी रखने पर हम संकोच करती हैं, डरती हैं, जो कहाँ आपका सुकोमल चरण, कहाँ हमारा सिंह अंग कठोर, और उस पैरों से आप वन में घूमते हैं, कुरपादि भ्रमत भीर भवदार अटत मन में कलिलता मन कांत हे कांत, एक एक शब्द में नजरे क्या क्या भाव भर रहे, कांत शब्द में भी इतना भाव भरा रहा है, काम से संबंधित काम का काम, काम माने यहाँ पर प्रेम, प्रेम की अंतिम सीमा जहाँ पर पड़ी, वैसे संबोधन को यहाँ पर काम करता है। मन कहता है, गोपियां कहती हैं, तो हमारे मन में ये दुख होता है, ये कृष्ण चरणों को बहुत क्लेश हो रहा है, कंकड़ी और अंकुर प्रवेश कर गए, कितना इनको कष्ट होता है, सुकुमार चल रहे मन कहता है, अरे बावरी, कृष्ण को कृष्ण के अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता होगा जो कंकड़ पर और पत्थर पर चुभने वाले कंकड़ों पर या कांटों पर अपना पैर रखेंगे, अरे तू समझता नहीं, कृष्ण को सब समय होश रहता है, जब गायें दौड़ करके भागेंगी तो वो सपाट रास्ते पर घासों के ऊपर में भागती है ना, कहां भागेंगी, जहां पर कसुक वन उपवन ये सब है, कंकड़ हैं, जहां पर की कांटे हैं, बावले वृक्ष इत्यादि सब, और एक होता है ना गोकुल, माने वो कपड़े में भी लग जाएगा पैरों में, 1000 जगह कांटे खून जाए तो वो लगेंगे, और ब्रज में ऐसे ही कांटे अधिकतर पहले होते थे और आजकल भी हैं, किंतु पहले जैसे हम जब परिक्रमा में निकले थे ब्रज मंडल
के कांटे
एकदम भर जाता था पैर, और निकलेंगे नहीं सर जी, छोटे छोटे, और बड़े कांटे यदि लग गए तो आर पार कर लेंगे, तो गए उधर ही सपाट मैदान में भगेंगी, जहां पर की बालू का जमुना का किनारा वह पर भगेंगी, वो तो भागेंगे जिधर में आदमी नहीं जा सकता, तो कृष्ण उस समय देख करके दौड़ेंगे या सपाट दौड़ेंगे उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए। फिर मन कहता है, अरे पृथ्वी बड़ी है, ये सुकोमल सुकोमल भाषों को अपने लंबी जीवा को कर देती है सुकोमल, उनके जितने कांटे हैं वो रबर के जैसे बन जाते हैं, रबर का कांटे पर पैर रखने से, या रबर का वो पत्थर की नुकीले वो करे हों उस पर पैर रखने से उसमें चुभेगी कि नहीं, ऐसी कितनी पक्ष विपक्ष की बातें करती हैं कलिलता मना, कितने प्रेम की ये सब बात, तो कहते हैं जिस गीत का मर्म ये हो, राधा कृष्ण के विलास का प्रसंग हो, जैसे रा रमानंद का प्रसंग, भ्रमर गीत का प्रसंग ले लो, इस प्रकार से वो भ्रमर के साथ में बात कर रही है, जिन गीतों का यह भाव हो वही गीत सबसे इसलिए बतलाया है, विकृतम ब्रज मदवी दंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रणीया अथ वर्णीय रज भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोग मासुम अचिरेण, इसमें अधिकार किसी का नहीं, बहुत कम दुर्लभ है अधिकार, तभी कोई जी साधु संघ में आकर तो उसकी श्रद्धा हुई, लोभ हुआ और उस लोभ से श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं को सुने सुने ही नहीं विकृतम रज विष्णु सुनिया अनुसुनिया मैंने क्या सुनना चाहिए, जब नहीं सुनता है तो पत्थर आए सुनना नहीं उसके लिए उचित है एकदम विधि दे दी विधि लिंग ये क्रिया है विधि लिंग मैंने क्या जरूर करना चाहिए सुनना चाहिए नहीं तो पत्थर आए होगा यदि कोई श्रद्धा पूर्वक अनुसुनिया अथ पढ़नीय गुरु से सुन करके अनुसुनिया माने और इसके बाद में जब अनुकीर्तन करता है तो श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करना चाहिए कैसे इसी के लिए बताया है जैसे जल प्रपात से धारा अपने आप प्रवाहित होती है कहां से पानी पत्थरों से आ रहा कोई भी चीज नहीं और निर्झर सब समय वो झरता रहता है पानी कभी वो समाप्त नहीं ऐसे जिनके हृदय में भगवान की कथाएं अपने आप चलती उन कथाओं का यदि कोई सेवन करे ना बस अपने आप इसलिए अनुसुनिया पढ़नी भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ पराम भक्ति पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति प्रज की भक्ति पराभक्ति माने गोपियों की प्रेम वाली भक्ति भी उसके हृदय में उदित हो जाती है प्रतिलब्ध काम और उसका कामना जितना है काम फिर करो संसारिक आसक्ति सब कुछ सदा के लिए एकदम ऐसी कथाओं को सुनना ही हमारे लिए जो नहीं सुनता है वो आत्मा इस तरह से बतला रहे हैं गानों में कीर्तनों में संगीत में कौन संगीत श्रेष्ठ हुआ क्योंकि कृष्ण और गोपियों से सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवता के अंत में जो रस रसायन उसमें ध्रुव से प्रहलाद से विषम पितामह इत्यादि के वचनों में भी कहां कहां से अनुसंधान करके गोपियों की भावना लेकर के कृष्ण जिससे गोपियों का संबंध कृष्ण से नहीं है वो संगीत अधूरा है और जहां पर उनका यह भाव सर्वोत्तम गोपियों का भाव के साथ में कृष्ण का ये वंदना भी है वो वंदना सबसे जैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटन और बाकी रहने दो कैसा बढ़ेगा और यदि गोप स्त्री परिपेष्टि तो विजयते ये नहीं कहने से इसलिए अंत में इसको कहा नहीं तो अधूरा हो जाएगा उससे वैष्णव को उन लोगों को कोई प्रयोजन कस्तूरी तिलक रखें वो तो द्वारका में भी लगा सकते हैं कस्तूरी तिलक और सब बातें कहीं भी हो सकती है किंतु गोपियां यदि नहीं रहेगी तो हाथ में बंसी भी नहीं रहेगी वो मुकुट भी नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा और वैष्णव को चाहेंगे क्या उन सुख इसी तरह से सब बंसी तो ऐसे जितना भी कृष्ण का रूप का वर्णन वंदना इत्यादि की गई है यदि गोपियों को उसमें से निकाल दिया जाए राधा जी को निकाल दिया जाए जैसे एक सुंदर रूप गोस्वामी जी